अधोलोक का स्वरूप देखते हुए हमने तो नरकों की बात देखी थी, नरकों में कैसी कैसी परिस्थिति होती है, वहाँ जीवों के कैसे परिणाम होते हैं। अधोलोक में ही जो व्यंतर और भवनवासी रहते हैं उन संबंधी यहाँ कुछ हम जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो व्यंतर तो ऊपर के खरभाग में भी रहते हैं। व्यंतर में से एक जाति जो राक्षस जाति है वो पंख भाग में भी रहती है, और व्यंतर पहले पृथ्वी के ऊपर भी, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं वैसे पृथ्वी के ऊपर भी उनके कुछ रहने के ठिकाने हैं। पृथ्वी के अंदर जो है उसको भवन कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर है कुछ आवास है और कुछ भवनपुर है। तो भवनपुर उसमें क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे हम। ये पेज नंबर 70 निकालना है, 70 हिंदी वाला 70 हो। तो हमने तो देखा था कि ये जो भवन जो है पृथ्वी के अंदर है, देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उसमें पांचवी लाइन है कि भवन तो पृथ्वी के अंदर होते हैं, मिला ना। 70 पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ, हाँ मिला आपको, पांचवी लाइन है इनमें, भवन तो पृथ्वी के अंदर होते हैं, मिला ना भाई। हाँ, बड़े बड़े अनेक योजन विस्तार वाले चौकोर लगभग 300 योजन ऊंचाई वाले होते हैं। हमने देखा था जैसे तलघर होते हैं, कैविटीज होते पृथ्वी के अंदर, और इतने लंबे लंबे 300 योजन है, एक योजन तो कितना हुआ, बड़े योजन है ना, ये महायोजन की बात है। चार कोश का तो ऑर्डिनरी योजन होता है, और यहाँ 500 गुना करना, ये महायोजन है। और इतने बड़े बड़े योजन विस्तार वाले यहाँ 300 योजन तो हाइट है, ऐसे तो और बड़े बड़े होते हैं। एक राजू बहुत बड़ी असंख्यात योजनों की है, राजू का बहुत बड़ा माप है।
आपने योजन बोला,
हमने योजन बोला, हाँ हाँ योजन बोला। तो प्रत्येक भवन में 100-100 योजन ऊंचा एक पर्वत होता है, और जिसके ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय होता है। एक एक चैत्यालय में 108 108 जिनबिंब विराजमान है, जो 500 धनुष ऊंचाई वाले हैं, और जो रत्नमयी है, रत्न जड़ित नहीं कहा, रत्नमयी, रत्नों से ही निर्मित है, रत्न से बनी हुई है। जैसे ये हमारे यहाँ जो मूर्ति विराजमान है संगमरमर से बनी है, तो वैसे वो किस में बनी है, रत्न में ही से बनी है, और किसी ने बनाई नहीं, किसी कारागिर ने, वो नेचुरली ऐसे ही है, अनादि से ऐसी रचना पाई जाती है। अब वहाँ जो चैत्य वृक्ष या अन्य जो रचनाएं हैं मानस संबंधी, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, व्यंतरों के ये जो भवन है, आवास है और भवनपुर है। अब यहाँ आवास किसको कहना उसकी बात देखते हैं। लास्ट लाइन 70 पेज पर, कि पहले आवास क्या है देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर ऊंचे स्थानों में तालाब, वृक्ष, पर्वत आदि के ऊपर यंत्रों के जो निवास स्थान है उन्हें आवास कहते हैं। तालाब के ऊपर या समुद्र के ऊपर भी अलग अलग सतहों पर पाए जाते हैं। हम कहेंगे नीचे कुछ उसको आधार नहीं तो कैसे हो गए। तो आकाश की अन्य अन्य श्रेणियों में उनके जो रहने के ठिकाने पाए जाते हैं उनको कहेंगे आवास।
हाँ,
तो देखिए तालाब, वृक्ष, पर्वत आदि के ऊपर व्यंतरों के जो निवास स्थान है उन्हें आवास कहते हैं। व्यंतर तो अनेक जगहों में रहते हैं, खरभाग और पंखभाग में तो रहते ही है, उसको हमने क्या कहा था? भवन। अभी हमने देखा था ना, खरभाग और पंखभाग में उनके भवन होते हैं। परंतु जैसे हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वैसे वे भी पृथ्वी के ऊपर वृक्षों, पर्वतों एवं समुद्रों के ऊपर भी रहते हैं। व्यंतर यानी समुद्र के मान लेते एक लेवल पर है, फिर और ऊपर 10,000 हाथ ऊपर जाके फिर वहाँ पर उनके कुछ निवास स्थान है, फिर ऊपर जाके वहाँ पर है, इस तरह से। मेरुगिरी, गिरी यानी पर्वत, यानी मेरु पर्वत, नाभिगिरी। अब ये कहाँ क्या होते हैं जो हम मध्य लोक का वर्णन देखेंगे तब उसकी बातें हम विशेषता जानेंगे। ऋषभगिरी नाम सुना है कभी? ऋषभगिरी नाम नहीं सुना किसी ने? नहीं सुना? भरत चले वृषभा चल पर, पूजा में सुना है कि नहीं? सूरज बन भरत चक्रवर्ती जब सब पूरा छखंड जीत के आता है तो पहले क्या करता है? नहीं मालूम, कभी सुना नहीं? ऐसा नियम है जब चक्रवर्ती छखंड जीत कर आता है तो वृषभगिरी कहो या वृषभांचल कहो उस पर जाकर उसका अपना नाम लिखना पड़ता है। वो सुना है कि नहीं? तो लिखने के लिए गया, अभिमान हुआ था, मैं तो चक्रवर्ती तो जगह ही नहीं थी क्योंकि अनादि से तो चक्रवर्ती होते ही आए हैं और हर अपना नाम लिखते आया है तो उसको नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी। तो क्या करना पड़ा? पहले एक नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा तो उसका मान चूर हो गया। ये सुना है ना, ये वृषभगिरी। हाँ, यमगिरी, कंचनगिरी, अब वो क्या कहाँ है वो तो बाद में देखेंगे। इत्यादि अनेक पर्वतों पर व्यंतरों के निवास स्थान है। जहाँ जहाँ ये सारे पर्वत है, जहाँ जहाँ चैत्यालय है, वहाँ वहाँ ये व्यंतर तो होते ही होते, सब जगह है ये पाए जाते। समुद्र के तथा भूमि के ऊपर अलग अलग सतहों पर, सतह ने अलग अलग लेवल पर, हम कहते ना मेरिडियंस होते हैं, अभी हम हमारे साइंस में उसको कहेंगे क्या, अलग अलग मेरिडियंस पर, अपनी भाषा में क्या कहेंगे, अलग अलग लेवल्स पर 1,00,000 योजन की ऊंचाई तक। हमने क्या देखा है, मध्य लोक कितना है, जितना मेरु पर्वत की हाइट है वो कितना है, तो 1,00,000 योजन वाला है। तो समुद्र की लेवल से लेकर या भूमि की लेवल से लेकर 1,00,000 योजन की ऊंचाई तक अलग अलग लेवल पर इनके रहने के ठिकाने हैं। तो उनके जो निवास स्थान है उनको कहेंगे आवास। पृथ्वी के अंदर थे वे थे भवन, समुद्रों के पृथ्वी के ऊपर अलग अलग लेवल पर हो गए वो है आवास। देखो आगे लिखा है, पृथ्वी के अंदर होते हैं वे भवन, पृथ्वी से ऊंचे स्थानों में यानी लगते हुए नहीं, ऊंचे स्थानों में अलग अलग सतहों पर पाए जाते हैं वे आवास है। तथा जो समभूमि पर होते हैं, समभूमि जैसे हम रहते हैं, हमारे घर कहाँ है? भूमि पर है, जमीन पर है, यानी भूमि के लेवल पर है। तो जो समभूमि पर होते हैं, जैसे हम समभूमि पर रहते हैं वैसे जो उनके रहने के स्थान है उन्हें भवनपुर कहते हैं। तो व्यंतर कहाँ रहते हैं? तो नीचे भवनों में भी रहते हैं, अलग अलग लेवल पर, जमीन के ऊंचाई पर, समुद्रों के भी ऊपर अलग अलग लेवल्स पर जो रहते हैं उनको उनके आवास कहते हैं। और उनके ऐसे कुछ नगर है जो भूमि पर है उनको भवनपुर कहते हैं। इन एक एक भवन में असंख्यात असंख्यात देव रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े भवन हैं, असंख्यात देव एक एक भवन में रहते हैं। देवगति में जो चार प्रकार के देव है हमने देखे थे, कौन कौन से है? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और विमानवासी। ये ज्योतिषी यानी वो हमारा ज्योतिष बताने वाले, वो ज्योतिषी नहीं हो? हाँ
ज्योतिषी
ये ज्योतिषी यानी जो ज्योतिषी विमान है, हमें जो ये जो ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र दिखते हैं वो क्या है? ज्योतिषी विमान है। वो विमान यानी क्या है? जैसे हमारे कोई नींबू या संतरा हम आधा हिस्सा कट करके रख देंगे ऊपर सपाट फ्लैट और नीचे से गोल, हाँ तो वो जैसे वैसे पृथ्वी के ऐसे बड़े बड़े खंड होते हैं, इनको ज्योतिष के विमान कहते हैं। और एक एक विमान में बहुत सारे देव रहते हैं, यानी हमें जो ये सारे प्लैनेट्स वगैरह ग्रह नक्षत्र दिखते हैं वो कितने हैं, कहाँ है, उनकी कितनी गिनती है, क्या कोई गिन सकता है?
नहीं।
मैं आपको गिन के बताऊंगी, ये साइंस है हमारे पास पूरा। और कैसा उसका हिसाब करना, क्योंकि हमने अभी सीखे नहीं ना, ये मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनकी गिनतरी बनेंगे दिखाएंगे। और हर एक एक, एक जो वलयाकृति जो एक द्वीप एक समुद्र है, हर एक के ऊपर कितने कितने होते हैं उसकी संख्या बताएंगे, उसका गणित कैसा निकालना वो बताएंगे, और पूरी यहाँ कितने हैं वो सब बताएंगे। अब वो तो बाद में आने वाला विषय, इस पुस्तक में लिखा है आगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, चार प्रकार के देव कौन से बताए? हाँ बहन मिता बहन, वनवासी, व्यंतर, ज्योतिषीय, वैमानिक। हाँ स्वधर्म आदि, आदि लगाने स्वधर्म से लेकर ऊपर के स्वर्गों में रहने वाले वैमानिक देव कहलाते हैं। स्वधर्म ये पहले नंबर का जो स्वर्ग है उसका नाम है स्वधर्म, दूसरे का नाम है ईशान, नीचे से ऊपर, पहला दूसरा, एक एक लेवल पर दो दो स्वर्ग है, पहला दूसरा, तीसरा चौथा, पांचवा छठा, एक दक्षिण में एक उत्तर में। जो हम पहला नाम लेंगे वो दक्षिण का, और जो बाद में नाम लेंगे वो उत्तर का। तो हम कहेंगे स्वधर्म ईशान, वो बातें आएगी अभी, इसमें नहीं होगी वो। तो प्रत्येक स्वर्ग में यानी प्रत्येक विमान में, विमान किसको लेना, ये हम हवाई जहाज से जा आए ना यहाँ इंडिया से, वो विमान नहीं है। हाँ तो प्रत्येक में असंख्यात देव रहते हैं, फिर भी वैमानिकों से भवनवासी अधिक है। क्या कहना चाहते हैं? ये विमानों में भी असंख्यात देव रहते हैं और भवनों में भी असंख्यात रहते हैं, तो कहते वैमानिकों की जो संख्या है उनसे भवनवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ख्याल में यही बात क्या कहना चाहते हैं सरोज बे? देखो फिर से, ये जो स्वर्गों के जो विमान है यानी उनके जो रहने के ठिकाने है, हाँ वो पृथ्वी के खंड है, यहाँ उनको विमान कहते हैं। उनके जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनके जो वाहन होते हैं उसको भी विमान कहते हैं, वो विमान अलग है। जैसे स्वर्गों के जो देव है वो यहाँ मध्यलोक में आएंगे तो अपने अपने विमान में बैठकर आएंगे, या नंदीश्वर द्वीप में दर्शन करने जा रहे तो अपने अपने विमान में बैठकर जाएंगे, वो विमान यानी उनका वाहन है, जैसे आपकी कार है वैसा उनका है। परंतु वो जो उनके जो रहने के ठिकाने हैं वो उनके विमान है। जैसे हमें जो ये ग्रह वगैरह दिखते हैं वो क्या है? ज्योतिषी देवों के विमान है, उसको हम ज्योतिष बिंब कहेंगे। देखो यानी सबसे यानी कम वैमानिक देव कितने तो असंख्यात है, उससे भी असंख्यात गुना भवनवासी है, उनसे भी असंख्यात गुना व्यंतर है, और उनसे भी असंख्यात गुना ज्योतिषी देव है। मैक्सिमम संख्या किन की है? तो ज्योतिषी देवों की है, देव मध्य लोक में। ये जो हमें दिखाई देते हैं वो तो उनके रहने के ठिकाने हैं, उस पर जो रहते हैं वो ज्योतिषी देव है। हाँ यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछना। भवन में भी रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर भी रहते हैं, और जो 1,00,000 योजन की हाइट तक अलग अलग सतहों पर भी रहते हैं। क्या हाँ ऊपर जा सकते हैं गमन करके? नहीं नहीं, वो उनके जाने की शक्ति है उनमें, व्यंतरों को भवनवासियों को भी, वो ऊपर के विमानों में जाने की उनकी भी योग्यता है, उनकी भी शक्ति है, वो जा सकते हैं। वो स्वयं गमन करके पहले दूसरे स्वर्ग में जा सकते हैं और ऊपर 16वें स्वर्ग तक दूसरे देव वहाँ के देव उनको लेकर ऊपर तक जा सकते हैं। यानी उनकी गमन शक्ति तो है, वहाँ पर विहार करके जा सकते हैं। उनका रहने का ठिकाना किधर है, उनका अपना अपना कहाँ है, भवनों में, आवासों में और भवनपुर में, जहाँ वहाँ के व्यंतर अपने अपने जगह में रहते हैं। हर एक की अपनी अपनी रहने की जगह निश्चित है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? वो सारे देव है, ये देवगति के जीव है, ये चारों जो है ना, भवनवासी है, व्यंतर है, हाँ ये क्या है, देवगति के जीव है। हाँ उसमें हम कहेंगे वो वैमानिक, उनको हम स्वर्गों के देव कहते हैं और इनके रहने के ठिकाने नीचे है, इतना डिफरेंस है उनमें। अभी उनमें क्या क्या डिफरेंस है, उनके नाम क्या है डिफरेंस, उनके क्या क्या कैटेगरीज होती है, उनमें कितने कितने अलग अलग भेद है, उसको हम देखने जा रहे हैं अभी। हाँ
कोई भी देव कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं?
हाँ हाँ, ये मध्य लोक में सर्वत्र जा सकते हैं। हाँ आपसे क्या प्रश्न है? अंदर होते हैं
तो वो जो ब्लैक लाइन है वो ही पृथ्वी,
वो ब्लैक लाइन भी पृथ्वी है, वो खर भाग है।
हाँ।
और जो रेड है वो भी पृथ्वी है, वो पंख भाग है। इन दो भागों में, हाँ ये पूरे पीली भी पृथ्वी है, वो तीनों पहली पृथ्वी के तीन हिस्से है। हाँ हमने देखा था ना, ऊपर 16,000 योजन, बीच में 84,000 योजन और फिर नीचे 80,000 योजन। तो ऊपर के दो भागों में भवन है, नीचे के भाग में नरक है।
येलो
लिखा है वो है पीला, उसमें पहले नरक के 13 पटल है।
अच्छा वो पहला पीला है, वो
पीला है उसमें। हाँ
ये जो चार है देवलोक की जो आपने बात की, उसमें जितने भी देव है उनके जो स्किन के कलर थे, उसमें जैसे अफ्रीका है अलग है, इंडिया अलग है, चाइनीज अलग है, वैसे हो सकते हैं कि एक ही हो सकते?
उनके शरीर के, उनके जो वैकृत शरीर होते हैं और हर एक की हाइट बॉडी ऊंचाई वगैरह सब अलग है, वो हम देखेंगे अभी। हाँ उनकी क्या क्या विशेषता है। हाँ सभी सब जगह जिन मंदिर रही है और जिसको हम कहें परंपरा से वहाँ जिन धर्म ही चलता है। अब यहीं पर कोई भी मरकर जाएगा वो तो जिन धर्म ही फॉलो करेगा, क्योंकि वो बाकी देव उनको वही धर्म सिखाएंगे, वहाँ अन्य कोई धर्म नहीं चलता। हाँ चैत्यालय है वहाँ, और जो है ना पुराने जो देव है वो नए आने वाले देवों को वो फिर वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ की उनकी पद्धति समझाएंगे, ऐसे वहाँ तो चलता है। देखो ये हमने यहाँ तक पढ़ा।
हाँ बड़ा आवास होता,
वो आवासों के यहाँ उन्होंने डायमेंशंस नहीं बताए हैं।
भवन बड़े होंगे,
भवन बड़े होने चाहिए
क्योंकि वो असंख्यात योजनों के एक भवन है, हाइट उसकी इतनी चौड़ाई और बड़ी होगी।
देखो अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे कि वैमानिकों से भवनवासी अधिक है, मिला क्या आपको 71 पेज पर? उनसे भी व्यंतर अधिक है और सबसे अधिक संख्या ज्योतिषी देवों की है। हम जिन्हें ग्रह तारे नक्षत्र चंद्र सूर्य कहते हैं वे तो ज्योतिषी देवों के विमान है, विमान ने रहने के ठिकाने हैं। 1,00,000 योजन ऊंचाई वाले मध्य लोक में, अब ये मध्य लोक यानी वो मेरू पर्वत जो है नीचे से 1,00,000 योजन उसकी हाइट है, जमीन के अंदर 1,000 योजन है और जमीन के ऊपर 790 से लेकर 900 योजन तक, यानी मात्र 110 योजन के पट्टे में, क्योंकि ये तो लाख योजन तो बहुत हो गया ऊपर, 110 योजन के हाइट में उतने एरिया में ये सारे पाए जाते हैं। क्या ग्रह नक्षत्र, ऐसे फैले है एक राज्य तक, क्योंकि एक राज्य तक असंख्यात द्वीप समुद्र है। प्रत्येक द्वीप और समुद्र के ऊपर उसके अपने अपने नक्षत्र तारे ग्रह वगैरह है, उसमें कितने ही मूविंग है और कितने ही फिक्स है, वो कहाँ के मूविंग है कितने मूविंग है उसकी भी चर्चा आएगी जब हम ज्योतिषी देवों की बात करेंगे, तब उसकी चर्चा करेंगे। तो ये बहुत लिमिटेड एरिया में, और हमारे सारे अभी आज का साइंस कहाँ ये स्पेस में रिसर्च हो रहा है, ये प्लैनेट्स वगैरह उसके ऊपर तो गए नहीं है, मध्यलोक की लाख योजन तक है, और स्वर्गों के विमान तो उसके भी ऊपर है। यहाँ तो सारी रचना तो राजू में मापते है, राजू का माप मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मीर को अकेले में समझाएंगे, यहाँ कोई समझेगा नहीं, क्यों
समझेगा।
हाँ, आपका प्रश्न है, कोई भवनवासी होते हैं, कोई व्यंतर होते, कोई ज्योतिषी होते, क्यों ऐसा होते अलग अलग, कि अपने कर्मों से होते? हाँ, क्योंकि एक तो उन्होंने देव गति बांधी है, परंतु फिर भी ऊपर के स्वर्गों की आयु नहीं, क्योंकि इनकी आयु अलग अलग होती है, कहाँ की कितनी आयु है। जैसे ज्योतिषी देवों की पल्लों में आयु होती है, और मिनिमम आयु भी पल्ले के आठवें भाग प्रमाण होती है। भवनवासी व्यंतरों की उससे भी छोटी हो सकती है, परंतु मिनिमम वहाँ 10,000 वर्षों की है। तो जो जैसी आयु बांधता है वो वहाँ चला जाता है, उसमें अन्य भी जो कोई उनकी विभूति होती है वो अलग अलग होती है ना। ऊपर के स्वर्गों में वैभव ज्यादा है तो अधिक पुण्य करके ऊपर चला जाता है, उसने भी कौन से सहने वाला कहाँ तक जन्मता इसके सारे नियम हैं। तो बाह्य संयम या अज्ञान पूर्वक किए हुए संयम से भी देवगति में जाता है जी, और अकेला मनुष्य ही नहीं जाता, क्योंकि असंख्यात जीव वहाँ है, मेजोरिटी तो तीर्यन से ही जाते हैं वहाँ पर, असंख्यात देव है और मनुष्य तो संख्यात है, और मनुष्य मरकर भी जाएंगे तो कितने जाएंगे, तो वहाँ तो मेजोरिटी तो सारी तीर्यन संख्या है, असंख्यात तीर्यन। अभी हमने यहाँ देखा ना मध्य लोक, हमने एक नियम देखा था कि भोग भूमि के सारे ही जीव मरकर देव में जाते हैं। ये ढाई द्वीप जो मनुष्य लोक है वहाँ तो तीर्यन है ही है, ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीपों में जितने तीर्यन चे, लास्ट वाला स्वयं भ्रमण छोड़ दो, बीच में तो जगन्य भोग भूमि ही है तीर्यंचों की, वहाँ कोई मनुष्य नहीं है, तो कितने वहाँ तीर्यंच हो गए, वो सारे मरकर नियम से देव में जाएंगे।
तो ये भवनवासी,
हाँ वो तो सौदर्म ईशान में भी जा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, ये नहीं, आपके जो प्रश्न था, इन शॉर्ट कर्म बांध कर वहाँ चले जाते हैं। हाँ, कर्मों का तो
परिणाम ऐसे होते
हैं, हाँ हाँ जाते हैं ना, हाँ तीर्यंचों में भी ऐसे परिणाम होते हैं, असंगी भी जा सकता है, भोग भूमि के, भोग भूमि ऐसे ही होते हैं, भोग भूमि शब्द लगाए ना, कर्म भूमि के जो तीर्यंच है वो नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, दोबारा मनुष्य भी हो सकते हैं, तीर्यंच भी हो सकते हैं, परंतु भोग भूमि का मनुष्य हो या तीर्यंच हो वो मरकर नियम से देव ही होगा। देव होना कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है, जैसे हम मनुष्य है वैसे वो देव है, एक गति है वो भी, चारों गतियों में हमने अनंतों बार हम घूम चुके, ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है देव होना। हाँ देखो, तो मध्यलोक के प्रक्रम में हम उनकी संख्या का हिसाब लगाएंगे, ये कितने चंद्र सूर्य तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उन सब का हिसाब आगम के आधार से हम बताएंगे आपको। ये विमान तो पृथ्वी के खंड है, जैसे नींबू काटकर उसके ऊपर सीधा और नीचे गोल रखे, वैसे पृथ्वी के बड़े बड़े खंड देवों के विमान कहलाते हैं। पृथ्वी तो लोकाकाश के एक अंत से दूसरे अंत तक फैली हो उसे कहते हैं, और ये जो है वो क्या है, खंड है। सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषी देवों के विमान है, परंतु उन्हें वैमानिक देव नहीं कहते हैं, ज्योतिषी विमान है परंतु फिर भी उनको वैमानिक नहीं कहेंगे। वैमानिक किसको कहेंगे, वो 16 स्वर्ग के देव है, ग्रेवेक है, अनुदिश है, अनुत्तर है, उनको हम वैमानिक कहेंगे। जैसे नरकों में 49 पटल देखे, आपको याद है ना, पहले नरक में 13, फिर नीचे दूसरे में 11, फिर 9, 7, इस तरह से हमने देखे थे, ऐसे स्वर्गों में भी और एक पहले दूसरे के कितने पटल है, तीसरे चौथे के कितने, युगल युगल में वो जोड़ी होती है स्वर्गों की। तो पहले और दूसरा स्वर्ग एक लेवल पर है, तीसरा चौथा एक लेवल पर है। तो पहले दूसरे के 31 पटल, फिर ऊपर इतने पटल, फिर इतने, इस तरह से जो वहाँ संख्या है तो टोटल कितनी है, तो 63 पटल होते हैं। इनकी संख्या हम देखेंगे बाद में, आपको यहीं पर देखना है तो ये देख लो जरा कहाँ कितने पटल है। 14 नंबर का चार्ट देखना आपकी पुस्तक में भी है, एक नंबर के पेज के पास देखो, यहाँ पर सौधर्म ईशान लिखा है, नीचे से ऊपर पढ़ना है आपको। आप चार्ट में वहाँ देखना, 14 नंबर का लिखा ना बेटा, ये बोर्ड बीच में आएगा। हैंड रिटन अभी चलेगा, ये सब कंप्यूटर पर निकालो तो अच्छा है। हाँ आ गया, वो नहीं, वो हमने निकाले नहीं थे, उसमें रेगुलर चार्ट पावर पॉइंट बनाया नहीं था उसका। हाँ नहीं, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, रेगुलर ओरिजिनल लेके आना। अच्छा देखो, ये नीचे से ऊपर पढ़ना है हमको, पहला और दूसरा सौधर्म ईशान नाम है, इसमें 31 पटल है। तो हर एक लेवल पर दो दो स्वर्ग एक एक लेवल पर है। नीचे दिखा है ना, ये सौधर्म, सौधर्म ये सौधर्म स्वर्ग के ये सारे विमान बताए हैं, और ऊपर जो ग्रे कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वे है ईशान के, यानी जो सेंट्रल राइन होती है वो दक्षिण के आधिपत्य में आता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम वैमानिकों की बात करेंगे, और ये ईशान है। ऐसे ही हर जो जोड़ी जोड़ी लिखी है उसमें ये पहला नाम दक्षिण वाला है स्वर्ग, और दूसरा नाम है उत्तर वाला है, पर उसमें नीचे से ऊपर तक ऐसे 31 पटल है। सनत कुमार महेंद्र में 7 है, ब्रह्म युगल यानी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 4 है, लांतो कापिष्ठ में 2 है, शुक्र महाशुक्र में 1 है, शतार युगल में यानी शतार सहस्रार में 1 है। आनत आदि 4 जो लिखे हैं उसमें 6 पटल है, आनत प्राणत आरण और अच्युत यानी 12, 13, 14, 15, 16 नंबर के स्वर्ग है, उसमें 6 है। ये स्वर्ग इनके ऊपर जो 9 ग्रेवे क्रम से है उसमें नीचे के 3, बीच के 3 और ऊपर के 3, तो इसमें 3, 3 और 3 ऐसे 9 पटल है। अनुदिश है उसमें 1 ही पटल है, अनुत्तर में भी 1 पटल है। अब उसमें विमानों की संख्या अपना अभी का विषय नहीं है, हम तो यहाँ 13 पटल होते इतना ही देखना चाहते हैं, इसका विस्तार तो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी पटल यानी लेयर्स,
लेवल,
अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग इतने इतने विमान होते हैं। अब यहाँ क्या देखा हमने, आना अभी 71 पेज पर, नीचे का पैराग्राफ। नरकों में 49 पटल देखे, वैसे स्वर्गों में भी 63 पटल होते हैं। प्रत्येक पटल में अनेक विमान होते हैं। इन विमानों में रहने वाले विमानवासी देवों के भी दो भेद होते हैं, जिनको हम वैमानिक कहते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, विमानवासी। वास करना यानी निवास करना। विमानों में जिनका निवास है, रहना है, उनको विमानवासी देव कहते हैं। उनके दो भेद कौन से है, कल्पवासी और कल्पातीत। 16 स्वर्ग तक के जीव कल्पवासी है और ऊपर 9 ग्रह वेग, 9 अनुदिश एवं 5 अनुत्तर विमानों के देव कल्पातीत है। अब ये कल्पवासी यानी क्या और कल्पातीत यानी क्या, तो जहाँ अलग अलग ग्रेड्स पाए जाते हैं, हमारे ये यहाँ पर भी ना राजा है, मंत्री है, फिर उसके नीचे के अधिकारी है, फिर अलग अलग, ऐसे ही वहाँ पर कोई इंद्र है सबसे श्रेष्ठ, फिर उसका अंदर कौन है, लोकपाल है, सामानिक है, सायत्रिंश है, ऐसे जो अलग अलग भेद जहाँ पाए जाते हैं, यानी उनकी कल्पना है ना अलग अलग, उसके वैभव अलग होता है, उनकी ग्रेड्स अलग होते हैं, उनके अधिकार अलग होते हैं, तो उनको कहेंगे कल्पवासी। और जहाँ इसे कोई भेद नहीं है, स्वामी और सेवक ऐसा कोई भेद नहीं है, हर जीव स्वयं अपना ही इंद्र है, उसको अहमिंद्र कहते हैं। ये अहमिंद्र जहाँ होते हैं उनको कहेंगे कल्पातीत। आपने ग्रेवेक नाम बहुत बार सुना होगा, है ना, कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे ये को उपजाए, कि मुनिव्रत लेके ग्रेवेक में उत्पन्न हुई, इतना पुण्य किया, ऐसा भी आपने सुना होगा कभी। वहाँ क्या है, सभी इंद्र है, यानी वहाँ एक इंद्र और उसके अंदर दूसरे कोई ऐसा है ही नहीं है। तो देखो हम इसको देखेंगे, 72 पेज पर आए हम, जहाँ इंद्र प्रतीन्द्र यानी इंद्र के लेवल का ही दूसरा प्रतीन्द्र होता है, लोकपाल, त्रायस्त्रिंश, अनेक, इनके अर्थ और इनके पूरे भेद हम देखेंगे जब वैमानिकों की चर्चा आएगी। आदि भेद पाए जाते हैं, उन देवों को कल्पवासी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई राजा है, उसके नगर में कोई सेनापति है, सभापति है, मंत्री है, सैनिक है, नगरवासी है, वैसे वहाँ भी भेद पाए जाते हैं। तथा जहाँ स्वामी सेवक का कोई भेद नहीं है, प्रत्येक जीव अहम इंद्र यानी हर एक अपना अपना इंद्र, उन्हें कल्पातीत कहते हैं। ये ऊपर के जो है ना 16 स्वर्गों के ऊपर जितने हैं वो सारे कल्पातीत है, अतीत, कल्प से अतीत है। देखो 16 स्वर्ग है यानी 8 पेयर्स हो गए, उसके ऊपर 9 ग्रह वेग है, एक दूसरा तीसरा, ऐसे एक के ऊपर एक 9, परंतु एक लेवल पर बहुत सारे विमान होते हैं। उसके ऊपर क्या है, अनुदिश, सेंटर में एक, और पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर और उपदिशाओं में भी एक एक, ऐसे सेंटर में एक और 8, ऐसे 9 है वो अनुदिश है, एक ही लेवल पर। और सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर का सेंटर में एक है और फिर 4 बाजू में एक एक है, तो उसको कहेंगे अनुत्तर। अभी उनके नाम क्या है, कितना साहित्य है, उसकी चर्चा वैमानिकों में करेंगे। ये 16 स्वर्ग युगलों में पाए जाते हैं, इन पैर जैसे सौधर्म ईशान अर्थात पहला और दूसरा स्वर्ग, प्रत्येक जोड़ी में जिसका नाम पहले लेते हैं वह दक्षिण दिशा का स्वर्ग है और दूसरा उत्तर दिशा का। इन विमानों की रचना, संख्या आदि की चर्चा हम ऊर्ध्वलोक में वैमानिकों के प्रकरण में विस्तार से करेंगे। अभी तो अपनी भवनवासियों की चर्चा चलेगी, क्योंकि हम वो भवनों की बात चल रही थी, अधोलोक की बात कर रहे थे। तो व्यंतरों के भवन भी होते हैं, परंतु आवास और अन्य भी हमको समझाना था, इसलिए उसकी चर्चा देखी बीच में। अब जो हमने स्वर्गों में कल्पवासी होते ना, 10 ग्रेडेशन है उनके, ऐसे अलग अलग, वैसे ही भवनवासियों में भी होते। भवनवासी कहाँ रहते हैं, भवन में, भवनों में रहते हैं। देखो कल्पवासियों के समान भवनवासियों की भी 10-10 प्रकार के भेद है, उनके ग्रेड यानी पद अलग अलग है। वहाँ एक इंद्र होता है, एक प्रतीन्द्र होता है, इंद्र के समान प्रतीन्द्र होता है, जैसे हमारे यहाँ राजा होता है वैसे वहाँ इंद्र होता है। प्रतीन्द्र अर्थात युवराज, देखो हमें तो अपने यहाँ युवराज किसको कहेंगे, राजा के पुत्र को, जो राजा के बाद होने वाला है उसको युवराज कहते, वहाँ तो पुत्र वगैरह कुछ नहीं होते। तो वहाँ ये पिता है और ये उसका पुत्र है, ऐसी वहाँ पद्धति नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्मुहूर्त में युवान शरीर उत्पन्न होता है उनकी उपपाद शैया में से, तो वहाँ कोई किसी का पुत्र वगैरह नहीं है, फिर भी उसको युवराज जैसा कहेंगे हम। तो वहाँ तो देवों के कोई पुत्र पुत्री नहीं होती। देवों में उत्पत्ति के स्थान यानी उपपाद गृहों में, हमने नरकों में भी देखे थे उनके उपपाद के स्थान कहाँ होते हैं, वो बिलों के टॉप पर, उसमें से वो गिरते हैं नीचे। तो उपपाद गृहों में रत्न जड़ित उपपाद शैया होती है, जहाँ जीव अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण करके युवा ही जन्म लेते हैं। पर्याप्ति पूर्ण करके ने? उनके शरीर के योग्य परमाणुओं का ग्रहण होता है और सहज जीव का उसका ऐसा निमित्त बनता है कि उस शरीर की उत्पत्ति होती है, यानी फुल्ली फॉर्म। हाँ वैसा ही रहते, युवा ही रहते हैं, क्योंकि क्या है हमारे कैसे शरीर है, सप्त धातु ने ये चमड़ी है, हड्डी है, स्नायु है, मज्जा है, ऐसे बनी है, और उनकी विक्रिया से वो शरीर छोटा बड़ा वगैरह आदि होने की योग्यता है, वो अलग ही टाइप का शरीर होता है। जैसे इस शरीर से या औदारिक शरीर से वो सूक्ष्म परमाणु से बना हुआ होता है, थ्रू एंड थ्रू बीच में दीवार में से भी पास हो सकते हैं, तो उसके हमारे जैसे लिमिटेशन नहीं है इस शरीर जैसे। वो शरीर कैसा है उसका वर्णन अभी आएगा। वहाँ कोई बालक नहीं जन्मते कि जिनका बाल संगोपन करके उन्हें बढ़ाना पड़े, यह चिंता न देवों के है न देवियों के। यहाँ तो हमारी कितनी चिंता करनी पड़े, बच्चों को संभालना, उनको स्कूल में छोड़ना, लाना, क्या क्या करना पड़ता है, क्यों? और सबसे बड़ा काम तो उनको खिलाने में निकल जाता है। यहाँ की महिला जाती है कि नहीं पीछे मालूम नहीं, अभी इंडिया में क्या होता है, बच्चा इधर उधर दौड़ता देता है और माँ उसके पीछे थाली लेकर उसको खाना खिलाने में, इधर भी ऐसा। अच्छा देखो हमारा तो अधिकतर समय बालकों की एवं बालों की निगरानी, देखरेख और संवारने में ही चला जाता है, चिंता भी उनके बारे में ही होती है। स्वर्गों में ना बालक है ना बाल है, वहाँ तो नख केश रहित सुंदर सप्त धातु रहित शरीर होते हैं। यहाँ तो नख सौंदर्य और केश सौंदर्य, ये चलते ना नेल के पार्लर भी होते ना, हाँ बहुत होते। उसके लिए कितना समय बर्बाद होता है वह उस पार्लर में जाने वाले ही जाने। शरीर ही मैं हूँ माना है तो ये बात ऐसे ही होगी। शरीर तो अपने से भिन्न है, फिर भी अभी उसको कुछ शेप देंगे, कुछ करेंगे और मैं सुंदर हो गया ऐसा मानेंगे। अरे हम तो जीव है, चेतन है और ये तो जड़ है। तो हमने क्या देखा, एक इंद्र है, एक प्रतिंद्र है, चार लोकपाल होते हैं, इन्हें दिगिंद्र भी कहते हैं। दिक इंद्र, दिक शब्द समझते ना, दिशा, दिशा के लिए दिक कहते हैं। जैसे दिगंबर शब्द कैसे तैयार हुआ, दिक अंबर यानी वस्त्र, दिशा ही जिसका अंबर है, वस्त्र है, वो दिगंबर नग्न है ना, आपने मूर्ति देखी ना, कैसी है दिगंबर का अर्थ क्या है, निर्वस है, निर्ग्रंथ है, इसी उनकी जो मुद्रा है उसको दिगंबर कहा है। यहाँ किसकी बात है, दिगिंद्र यानी दिशाओं के इंद्र, ये सेनापति के समान होते है। उनके नाम क्या है, सोम, यम, वरुण और कुबेर, यानी वो जो यम का स्वरूप अन्य मतियों ने जैसा सिंह वाला और ऐसा काला वाला ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा कोई किसी का हिसाब करता है और यहाँ से मरने वालों को ले जाता है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये तो उनके लोकपाल है। पूर्व दिशा में सोम, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण और उत्तर में कुबेर होते हैं। वे सब रहते तो है अपनी अपनी जगह में, अपने अपने स्वर्गों में, परंतु विहार करके अन्यत्र जाते हैं पंच कल्याणकों में। ये तो ये इन जनरल बात की है, वैसे भवनवासियों के भी इंद्र और ये अन्य जो है वो यहाँ आते हैं पंच कल्याणकों में। ये पंच कल्याणक जब कहा तो जो कीर्तन करके एक्चुअल पंच कल्याणक होते हैं उनमें जाते हैं। हम जब मंदिर बनवाते हैं तो हम भी यहाँ पंच कल्याणक मनाते हैं, उनमें कोई इंद्र नहीं आते। हाँ, वहां पर भी इंद्रों को स्थापित किया जाता है, परंतु वो बोली लगाकर घी बोली करते हैं ना। हाँ, इंद्र बनते हैं। हाँ, तो जब हम जैसे नाटक जैसा हम दृश्य करते हैं तो हम इंद्र बनते हैं और इंद्र जैसा वहाँ वातावरण निर्माण करते हैं। हाँ, तो जो एक्चुअल हुआ था हाँ उसका नाटक करते हैं हम। तो क्रीड़ा के लिए असंख्यात द्वीप समुद्रों में किंतु अपना स्थान नहीं छोड़ते, विक्रिया से एक या अनेक शरीर बनाते। क्या कहा? देवों में ऐसी सिद्धि, ऐसी कैपेसिटी उस शरीर की कि वो उनका ओरिजिनल शरीर तो जहाँ उनके रहने का ठिकाना है वहाँ पर रहते हैं, फिर वो एक या अनेक डुप्लीकेट शरीर बना सकते हैं, जितने जाए सैकड़ों सैन्य भी तैयार कर सकते। एक देव उसका अपना ओरिजिनल शरीर अलग, और विक्रिया के द्वारा तो अनेक पूरी की पूरी फौज तैयार कर सकता है।
और एक ही आत्मा सब
में, एक ही आत्मा सब में कंटिन्यूस है, सब में एक ही आत्मा, क्योंकि आत्मा के दो टुकड़े होते नहीं है। हाँ, क्या बराबर
है?
किसका आईडी करना है? शरीर उनका। हाँ,
तो दोनों शरीर से बात करेंगे, देवलोक में भी किसी से बात करेंगे और तो
वो है। हाँ, अभी उसका उपयोग एक जगह होगा, अभी उसकी कैसी व्यवस्था है क्या पता नहीं है मुझे बराबर, परंतु एट अ टाइम इतने शरीर बना सकते हैं। सभी शरीरों में आत्म प्रदेश अखंड रीति से फैलते हैं, ये है मुख्य बात है। प्राय त्रिंशत अर्थात 33 ये संस्कृत शब्द है ना, क्यों ये प्राय त्रिंशत 33 ये राजा के पुत्र के समान है, सामानिक अर्थात राजा के परिवार के समान है, तनुरक्षक अर्थात अंग रक्षक के समान है। तो किसी ने पूछा था कि अंग रक्षक क्यों होते हैं, क्या कोई वहाँ लड़ाई आक्रमण कोई बॉम्ब वगैरह करने आते लेके होते है क्या? तो कहते वहाँ कोई लड़ाई युद्ध कुछ नहीं होता है, ये अंगरक्षक तो उनकी बड़ी बड़ी सेना, ये तो उनका वैभव है, पुण्य है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर चलते हैं या कोई प्रेसिडेंट चलते हैं तो उनके साथ उनके कमांडोज होते हैं और उनके कुछ वो सब पूरे उनका लेके घूमते हैं ना, ऐसे उनका ये वैभव है, बस ये उनके पुण्य का उदय है। यानी ये जो अंगरक्षक है वाहन आदि के जो देव है वो कैसे है, हीन जाति के देव है, वहाँ वो सैनिक जाति के भी देव होते हैं, अनिक कहते हैं उनको। वो तो क्या ये हाथियों की सेना बनेगी, इतने सैकड़ों हाथी है, सैकड़ों अश्व है, घोड़े है, तो ये तो सारे क्या है, देव ही इनका रूप लेते हैं। ऐरावत हाथी का नाम सुना होगा, यहाँ आते हैं और फिर बालक कीर्तनकर को लेके मेरु पर्वत पर जाके जन्माभिषेक करते हैं, वो क्या है, वो भी वाहन जाति के देव होते हैं। अभी अन्य भी जो देव है उनके नाम है, उनका स्वरूप है, उसकी बात हम कल करेंगे। बोलो 2400 भगवान की।